नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित मंच चैट जीपीटी का निर्माण करने वाली कंपनी ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्टमैन ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ऑल्टमैन ने बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मुलाकात में उन्होंने भारत में एआई समाधानों को तेजी से अपनाने के बारे में विचार विमर्श किया। इस दौरान एआई के नियमन से संबंधित बिंदुओं पर भी उनकी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा हुई। ऑल्टमैन ने इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि उद्योग जगत में स्वनियमन महत्वपूर्ण है, लेकिन दुनिया को पूरी तरह से ऐसी कंपनियों के हाथों में नहीं छोड़ देना चाहिए जिसके पास एआई की ताकत है। ऑल्टमैन ने स्वनियमन पर हुई अनौपचारिक चर्चा के दौरान कहा कि ओपन एआई खुद ही अपना नियमन करता है और उसने चैट जीपीटी को पूरी तरह सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए लगभग 8 महीने का समय लगाया। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने बीते वित्त वर्ष में 4.6 अरब डॉलर की कर पूर्व आमदनी की, जबकि 2.8 अरब डॉलर का पूर्व पूंजीगत व्यय मुक्त नकद प्रवाह रहा। कंपनी ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में उसकी कर पूर्व एबिटा आय अब तक की दूसरी सर्वाधिक है, वहीं पूर्व पूंजीगत व्यय नकद प्रवाह अभी तक का सर्वाधिक है। कंपनी ने कहा वेदांता के वित्त वर्ष 2022-23 में 4.6 अरब डॉलर की कर पूर्व आय रही। इस दौरान पूंजीगत व्यय से पहले मुख्य नकद प्रवाह 2.8 अरब डॉलर किया। वेदांता का सकल ऋण मार्च 2023 तक 12 महीनों में 9.8 अरब डॉलर से गिरकर 7.8 अरब डॉलर रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक के नीतिगत ब्याज दर में लगातार दूसरी बार बदलाव नहीं करने के बावजूद विश्लेषकों का मानना है कि मुद्रास्फीति पर केंद्रीय बैंक की प्राथमिकता को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में रेपो दर में कटौती की संभावना नहीं है। हालांकि सभी जानकारों को उम्मीद है कि रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखने का सिलसिला दिसंबर में होने वाली मौद्रिक समीक्षा तक जारी रहेगा। उन्होंने रेपो दर में पहली गिरावट फरवरी 2024 की समीक्षा बैठक में होने वाली उम्मीद जताई है। HDFC बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री अभीक बरुआ ने कहा, जहां RBI गवर्नर वृद्धि को लेकर उत्साहित हैं और मुद्रास्फीति पर कम हुए दबाव को समझते हैं, वहीं वो मुद्रास्फीति के भविष्य के बारे में अधिक सतर्क भी हैं। वो मुद्रास्फीति को 4% के करीब रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्रिसिल रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री धर्म कीर्ति जोशी ने भी कहा कि RBI चालू वित्त वर्ष में दरों पर यथास्थिति बनाए रखेगा और केवल 2024 की मार्च तिमाही में कटौती शुरू करेगा। UBS इंडिया की अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन को उम्मीद है कि RBI फरवरी 2024 की बैठक में पहली बार दर में कटौती करेगा। इससे पहले वो दिसंबर 2023 की समीक्षा में ऐसा होने की उम्मीद कर रही थीं। सीमा शुल्क विभाग औषधीय उत्पादों के निर्यात और आयात के लिए 1 जुलाई से अतिरिक्त खुलासा करने की व्यवस्था शुरू करेगा ताकि आयात निर्यात खेप की त्वरित अनुमति दी जा सके। ये अतिरिक्त खुलासे सीमा शुल्क अधिकारियों के प्रश्नों को कम करेंगे जो औषधीय पौधों और रसायनों का व्यापार करने वाले कारोबारियों से अक्सर पूछे जाते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक परिपत्र में कहा कि आयुष मंत्रालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय के परामर्श से ये निर्णय लिया गया है कि पौधों के कुछ हिस्सों के निर्यात के लिए औषधीय पौधे के नाम की घोषणा जैसे अतिरिक्त जानकारियों को देना अनिवार्य होगा। CBIC ने पिछले महीने औषधीय उत्पादों में निर्यात आयात व्यापार के लिए अतिरिक्त खुलासे के प्रस्ताव पर विभिन्न अंशधारकों के विचार आमंत्रित किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल उधारी में चूक नुकसान गारंटी के संबंध में बृहस्पतिवार को दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय बैंक का ये कदम ऋण प्रणाली में व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए है। DLG एक विनियमित इकाई और निर्धारित मानदंड पूरा करने वाली इकाई के बीच एक अनुबंध व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मानदंड पूरा करने वाली इकाई निर्दिष्ट ऋण के एक तय प्रतिशत तक चूक पर RI को नुकसान की भरपाई करने की गारंटी देती है। RI का आशय बैंकों के अलावा RBI के नियमन में आने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से है। दिशा निर्देश के अनुसार कोई IEDLG व्यवस्था में सिर्फ ऋण सेवा प्रदाता या अन्य RE के साथ आ सकता है जिसके साथ उसकी आउटसोर्सिंग व्यवस्था है। दिशा निर्देश में कहा गया DLG व्यवस्थाओं को RE और डीएलजी प्रदाता के बीच एक स्पष्ट कानूनी रूप से लागू करने योग्य अनुबंध द्वारा समर्थित होना चाहिए। रिजर्व बैंक ने डिजिटल उधारी के लिए पिछले वर्ष नियामक ढांचा जारी किया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस साल 31 अक्टूबर तक तरबूज के बीजों का आयात 35,000 टन से अधिक का नहीं होगा और केवल वास्तविक उपयोगकर्ता के आधार पर ही इसकी अनुमति मिलेगी। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाली DGFT ने 31 अक्टूबर 2023 तक तरबूज के बीजों के आयात के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है। पिछले साल जून में सरकार ने इन बीजों के आयात के नियमों में आंशिक ढील दी थी। DGFT ने आयात के लिए लाइसेंस जारी करने के संबंध में 15 जून तक नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। DGFT ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा, आवेदनों को वास्तविक उपयोगकर्ता के आधार पर केवल प्रसंस्करणकर्ता के लिए स्वीकार किया जाएगा, जो उनकी खुद की प्रसंस्करण क्षमता के आधार पर तय होगा। इसके मुताबिक प्रत्येक आवेदक के लिए आयात की मात्रा निर्यात आयात सुविधा समिति तय करेगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आईजनसत्ता.com पर नमस्कार।